चलिए फिर से शुरू करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर से पहले हम लेसन का खुलासा करेंगे। पिछले सबक में हमने मुख्तलिफ अंबिया कराम के मिशन की बात देखी, अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ अदवार में भेजा। आज के सबक में बिल्कुल आगाज में ही मुख्तलिफ नबियों को रिज़्क़ के हलाल और तैयब का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, और इसी सबक में हम देखेंगे कि जब सब पैगम्बरों का मैसेज एक था तो फिर आज दुनिया में उन्हीं के नाम पर मुख्तलिफ मजाहब क्यों आबाद है। इंशाल्लाह हम इख्तलाफ और मुखालफत का फर्क भी देखेंगे आज के सबक की रोशनी में, और इसके साथ साथ हमें इस सबक से ये पता चलेगा कि कोई चीज हलाल हो या तैयब हो या दोनों हो, इनका फर्क क्या है और इंसान के जिस्म पर इसका असर क्या आता है। इसके बाद दूसरी चीज जो हम आज के सबक में देखेंगे वो ये है कि लोगों को जहालत के अंधेरों से निकालने वाली कौन सी चीज है, क्या तरीका कार है कि वो लोग जो ख्वाहिशों की नींद सो रहे होते हैं उनको उससे बेदार किया जाए, कैसे निकला जाए। रात के सबक में हम देखेंगे कि वो कौन लोग हैं कि जो नेकियां करके भी डरते हैं, और फिर नेकियों में भागना, इसका इंसान की तबीयत पर क्या असर आता है। और उसके बाद फिर रात को किस्सा गोई यानी एंटरटेनमेंट के नाम पर रातों को जागना, कल के दौर में इसके असरात और आज के दौर का ये शायद सबसे बड़ा मसला है, इसका थोड़ा सा हम असर देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अल्लाह की आयतों से कौन लोग पुश्त फेरते हैं, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर उस वक्त लोग क्या रवैया अख्तियार करते हैं। आयतों पे चलते हैं, आसान सबक है लेकिन असल बात यह है कि जो सुनना आसान होता है वो अमल करना मुश्किल होता है। पहला ही हुक्म जिसका ताल्लुक हलाल और हराम से है उसको ही सुनते वक्त हम नबियों के साथ साथ खुद को भी इधर मुखातिब करते हैं कि अल्लाह की होगी, और बात क्या है, या अय्युहर रुसुल, ए रसूलों, ओ प्रॉफिट्स, ओ मैसेंजर्स, क्या है, कुलू मिनत तैयिबाती, खाओ पाकीजा में से, क्लीन खाओ, और खाने के बाद वामलू सालेहन, और नेक अमल करो। इन दोनों कामों के करने के दौरान क्या ज़हन में रखो कि इन्नी बिमा तामलून अली, जो कुछ तुम करते हो यकीनन मैं इससे बाखबर। आपको सूरह बकरा की आयत याद आनी चाहिए जो बिल्कुल एक और दूसरे रुकू के फर्क से एक जगह यही हुक्म रसूलों को और दूसरी जगह इंसानों को है, या यो लजीना आमनु कहकर ईमान वालों के। यहां पहली बात देखिए कि रसूलों के लिए खिताब का सीगा आया है, रसुल रसूल की जमा है, जमा मुकसर कहते हैं यानी असल तरतीब लफ्जों की बदल जाती है, और या के लफ्ज को हम पीछे कई दफा देख चुके हैं कि खिताब है ओ के नाम पे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ओ मैनकाइंड। तो सवाल पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये रसूल नहीं थे, तो फिर इस तरह खिताब क्यों किया गया इनको। तो इसकी दलील, इसकी वजह क्या समझ आती है। पहली बात यह है कि ये साबित किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत मिली हर दौर के पैगंबर को भी यही हुक्म था कि अगर अल्लाह के नबी के दौर में उनमें से कोई रसूल मौजूद भी होता तो उसको भी यही हुक्म था। इसमें ये हरगिज नहीं मुराद कि ये सारे पैगंबर यहाँ जमा थे, और बास लोगों ने ऐसी बातों को बुनियाद बनाकर हाजिर और नाजिर के कई किस्म के अकायद अखज कर दिए। तो सिंपल सी बात है कि पिछले दो रुकुओं में मुसलसल नबियों का जिक्र था, अब नबियों को खिताब करके ये बताया जा रहा है कि हर जमाने में मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों में आने वाले नबियों को यही हिदायत दी गई थी। और आगे फिर हम देखेंगे कि नबियों की उम्मतों की बात है तो गोया की मंजरकशी की जा रही है, क्योंकि जब हम किसी चीज को इस तरह सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अच्छा बहुत सारे रसूल खड़े हैं और अल्लाह ताला उनको पुकार रहे हैं, तो सबको खड़ा कर कर एक ही किस्म की हिदायत दी जा रही है। और हिदायत क्या है कि कुलू खाओ, लफ्ज कुलू को देख लीजिए, कुल वाहिद है तो कुलू तुम सब खाओ, अमर कसी है। तो गोया के खाना अगर हम इस सोच के साथ खाते हैं कि अल्लाह ने कहा है खाओ, तो ये इबादत है। बिल्कुल ऐसे जैसे अकीम अस्सलाह, आतु ज़कात, इशरब, इल्बिस, इसी तरह कुल हुक्म है। तो गोया के खाना, लेकिन शर्त के मिन्नत तैयबात पाकीज़ा में से। खाने के साथ हमने दो लफ्ज पढ़े हैं पीछे भी, एक लफ्ज होता है हलाल और एक होता है तैयब। हलाल का ताल्लुक इंसान की रूहानी सेहत से होता है और तैयब का ताल्लुक इंसान की जिस्मानी सेहत से होता है। जरूरी नहीं कि जो चीज हलाल है वो तैयब भी हो, और दूसरी तरफ जरूरी नहीं कि जो चीज तैयब है वो हलाल भी हो। दोनों को समझ लीजिए, काफी दिन पहले ये बात हुई थी तो यहाँ थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। आप देखिए कि हलाल दो तरह से होता है ना, हमने पढ़ा था हलाल फी नफ्सी ही, यानी सोर्स ऑफ इनकम, जिस तरीके से किसी चीज को लेके आते हो वो है उसका रिसोर्स, वो हलाल होना चाहिए। अल्लाह की मना करदा चीजें जिन तरीकों से अल्लाह ने रोका, उन तरीकों से माल को हासिल नहीं करना। मिसाल लेते हैं सेब, किसी के घर में 5 किलो सेब आते हैं, जिन पैसों से वो सेब खरीदे हैं उन पैसों को हलाल कहेंगे, और सेब अपनी जात से हलाल है, हर फल हलाल है, हर सब्जी हलाल है। लेकिन वही सेब कुछ दिन पड़े रहे, उसमें कीड़ा लग गया, उसमें फफूंदी आ गई, अब वो हलाल तो थे, आपकी मेहनत की कमाई थी, लेकिन अब वो तैयब नहीं रहे, वो खराब हो गए। तो जब हला तैयब चीज, जब चीज तैयब नहीं रहती तो पेट खराब हो जाता है ना, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, जर्म्स आ जाए। बिल्कुल इसी तरह जो रिस्के हलाल का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो उनकी रूह बीमार हो जाती है। तो इसके लिए पहली शर्त है, क्योंकि आप देखिए कुलू पहले खाओ और फिर क्या कहा वामलू, कुलू में लेने की बात थी और ए मालू में देने की बात है। हमारे आमाल हमारे पेट के अंदर जाने वाले लुकमों के चुगलखोर होते हैं, पेट में हलाल लुकमे जाते हैं तो अच्छे काम करने को दिल जाता है, और इसका ऑपोजिट भी है। इसी तरह एक सवाल पैदा होता है कि कोई चीज, चले हलाल पे तो हम बात नहीं करते कि उसे बराह रास्त जहां वो लफ्ज नहीं आया, तैयब पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कोई चीज तैयब कब नहीं रहती। नंबर एक, वो चीज अपनी जात से तैयब ना हो, मसलन जैसे आपको बता दिया कि खाना ठीक है लेकिन उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल देनी कि जो इंसान की सेहत के खिलाफ हो। बहुत गर्म खाना है उसमें फूके मारेंगे तो तैयब नहीं रहेगा। हदीस में आता है कि खाने में फूक ना मारो, क्योंकि उसमें आज हमारी साइंस भी हमारी मदद करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि गलत वक्त पे खाना भी तैयब नहीं है, एक वक्त में बहुत ज्यादा खा लेना ये भी तैयब तरीका नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि तैयब का ताल्लुक इंसान की ईटिंग हैबिट से भी है। तो कुलू मिनत तैयबात से मुराद यह है कि तुम्हारे खाने के तौर तरीके भी तैयब हो। सबसे पहले हाथ धो लो, क्योंकि हाथ गंदे हो सकते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारी जुबान भी पाक होगी, और हकीकत है कि बिस्मिल्लाह की एक बरकत होती है। कभी आपने सोचा आज के दौर में इतनी बीमारियां क्यों हैं? इतने ज्यादा इंतजामात के बावजूद तो हो सकता है उसमें एक वजह इनमें से किसी एक चीज का मिसयूज करना भी हो। फिर आप देखिए बैलेंस खाएं, एक वक्त में ज्यादा खाना पड़े अगले वक्त में कम खा लें, फ्रेश खाएं, दूध फल इसी तरह से वो चीजें जो इजी डाइजेस्ट होती हैं उनको खाएं। बहुत ज्यादा चीजों के अंदर ऐसी हाई कैलोरीज डाल देना सिर्फ टेस्ट के नाम पर कि जो हजम ना हो सके, ये सारी चीजें तैयब के खिलाफ होती हैं। तो गोया के रसूलों को इस बात का हुक्म दिया गया, और वामलु सालेहन से एक और बात भी समझ आ जाती है, और वो क्या है कि कोई अमल कबूल ही तब होगा जबकि उसको हलाल खाने की का तवानाई से किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह अमल साले की दावत ऐसे ही नहीं देता कि तुम अमल साले करते रहो तो मैं कबूल ना करूं। तो लिहाजा ये सारी बात कहकर ये कह दिया कि इन्नी बिमा तामलू ना अलीम। सवाल पैदा होता है कि रसूलों के लिए यहाँ हलाल का लफ्ज क्यों नहीं आया? तो जवाब ये कि रसूलों से तवक्को ही नहीं थी कि वो हराम खाएंगे, वो हराम में इंडल्ज नहीं होते। और फिर तैयब खाने का हुक्म क्यों दिया रसूल को? तो उसकी वजह यह है कि रसूलों के ऊपर चूंकि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लिहाजा बड़े बड़े काम करने के लिए सेहत अच्छी होनी लाजिम है, और अच्छी सेहत के लिए इंसान का खाना पीना बहुत बैलेंस भी होना चाहिए। तो लिहाजा हम सब का भी इसमें अमल है कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, ना तो हर वक्त खाते रहे और ना हर चीज खाए, मुनासिब का और बिल्कुल भी ना छोड़े। जब हम छोड़ देते हैं उससे भी कई किस्म की बीमारियां आती हैं। गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी जाहिर है कि फिर वो रगड़ ही खाएगी ना। तो लिहाजा बैलेंस रखिए और जो खाते हैं उसको हजम लीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और यहाँ पाक चीजों से मुराद ऐसी चीजें भी हैं जो बजाते खुद पाकीज़ा भी हों और हलाल तरीके से भी हासिल हों, और यहाँ असल में रहबानियत का रद भी है। पहले दौर में नेक लोगों के साथ ही तसव्वुर ये बांध दिया जाता था कि ये ना खाते हैं ना पीते हैं। कहा नहीं, रसूलों को कह रहा हूं कि खाओ तो दूसरों को खाने का क्यों ना हुक्म होगा। रहबानियत और दुनिया परस्ती के दरमियान एतदाल की राह इख्तियार करो, ये है इस आयत का खुलासा। मुसलमान ना तो राहब होता है कि अपने आप को पाकीज़ा रिज़्क से महरूम कर दे, और ना दुनिया परस्त होता है कि हराम और हलाल की तमीज किए बगैर हर चीज खाने लग जाए। और यहाँ एक और चीज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस चंद हदीस है इस बारे में, फरमाया कि लोगो अल्लाह खुद पाक है इसलिए पाक ही चीजों को पसंद करता है। फिर आपने इसके बाद यह आयत तिलावत फरमाई और इसके बाद फरमाया, एक शख्स लंबा सफर की तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांगता है, या रब या रब, मगर हाल ये होता है कि रोटी इसकी हराम, कपड़े इसके हराम, और जिस्म इसका हराम की रोटियों से पला हुआ। अब किस तरह ऐसे शख्स की दुआ कबूल हो? ये मुस्लिम तिर्मिजी अहमद की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से। इसी तरह एक और रिवायत में यहां तक आता है कि ये शख्स अपनी सवारी पे सवार होकर खाना काबा में जाता है, काबा के पर्दे को पकड़कर दुआ करता है, लेकिन अल्लाह उसकी दुआएं क्यों कबूल करे? यानी उसके सारे इसबाब दुआओं की कबूलियत वाले हैं। काफिर की दुआ कबूल होती है, मुस्तर की दुआ कबूल होती है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ऐसी चीजों को मैं क्यों कर कबूल करूं कि जिसके अंदर ये चीज ठीक नहीं है। फिर इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है, अल्लाह तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा था, और सबसे ज्यादा पसंदीदा क्याम दाऊद अलैहिस्सलाम का क्याम है। क्या तरीका था उनका? आधी रात सोते थे और तिहाई रात तहज्जुद पढ़ते थे, और छठा हिस्सा सो जाते थे, और एक दिन रोजा रखते और एक दिन ना रखते, मैदाने जंग में कभी पीठ ना दिखाते। यानी ये भी तो आप देखे ना, एक बैलेंस तरीका है ना, कि उनके खाने पीने सोने जागने के औकात भी बड़े खूबसूरत है। उम्मे अब्दुल्ला फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में दूध का एक प्याला शाम के वक्त भेजा ताकि आप इससे अपना रोजा इफ्तार कर लें। दिन का आखिरी हिस्सा था और धूप की तेजी थी, तो आपने कासिद को वापस कर दिया, यानी आपने वो दूध लेने से इनकार कर दिया। कहा, अगर तेरी बकरी का होता तो खैर और बात थी, यानी आपको शक हुआ कि ये कहाँ से आया। उन्होंने पैगाम भेजा, या रसूलुल्लाह, मैंने ये दूध अपने माल से खरीद कर भेजा, फिर आपने उसको पी लिया। दूसरे दिन वो खातून जो थी वो नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, इस गर्मी में मैंने दूध भेजा, बहुत देर से भेजा था, आपने मेरे कासिद को वापस फरमा दिया। आपने फरमाया, हाँ मुझे यही फरमाया गया है, अंबिया सिर्फ हलाल खाते हैं और सिर्फ नेक अमल करते हैं। तो आप देखिए इसका इख्तमाम करना चाहिए। आज बाज दफा टेस्ट के नाम पर, भूख के नाम पर और ताल्लुकात के नाम पर हम इसका ख्याल नहीं रख पाते। इसी तरह हदीस में आता है, कह रसूलो, यानी अल्लाह, सॉरी, आपने फरमाया कि लोगो अल्लाह ताला पाक है और वो सिर्फ पाक माल को ही कबूल करता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे जिस्मों में भी पाक साफ माल जाए, और जो टूटी फूटी हमारी तो नेकियां भी कोई नहीं है, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला उसमें भी बरकतें दे। बार सब हमारी नेकियां इसलिए भी नहीं पनपती कि उसमें कहीं ना कोई ऐसी चीज लग जाती है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए इन सारी चीजों के को आसान करे। आगे देखिए अब बुनियादी टॉपिक जो, यानी रसूलों के नाते से अभी लेसन का एक थीम पॉइंट है आयत 52 से, वइन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और यकीनन ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है। यानी तमाम पैगंबरों का ताल्लुक एक ही उम्मत या जमात से है। बस रिवायत में आते हैं ना कि 1,24,000 पैगंबर हैं और 313 रसूल है बाकी अंबिया कराम थे, बास का जिक्र कुरान में है, बास का नहीं, 25 के करीब रसूलों का जिक्र कुरान में है। और सूरत अनिसा 164 में हम पढ़ चुके कि वह रसूलन कद कसस ना हूं अलैक मिन कब्लू, कि कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका किस्सा हमने आप पर बयान किया, वह रसूलन लम नक्सुस तुम अलैक, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका हमने आप पर जिक्र नहीं किया, तो मौजूद थे। कहा तुम सब एक हो, वह अना रब्बुकुम फत्तकूनी, और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मेरा ही तकवा इख्तियार करो। अब यहां से थोड़ा सा समझ से जाए, आगे भी है तुम्हें बात जाएगी। अल्लाह ताला ने यहाँ सारे रसूलों को एक उम्मत कहा, तो जब सारे रसूल एक उम्मत है तो फिर उन रसूलों के उम्मती भी तो एक ही उम्मत हुए ना। और ये कौन सी उम्मत थे, पीछे याद होगा आपको लिखाया था एक लफ्ज, अहले तौहीद। सारे रसूल क्या थे, एक अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में देकर भेजे गए, और रब उनका था। किसी रसूल की दावत ट्रिनिटी की नहीं थी, दो खुदाओं की नहीं थी, और हुरमन और जज़दान की नहीं थी, खैर और शर का रब फर्क है ये नहीं थी, गर्मी और सर्दी का रब फर्क है नहीं। हर रसूल की यही दावत हम कुरान में भी पढ़ चुके हैं कि एबदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अब ये सब का रसूलों का तरीका एक था। आगे हुआ क्या, ये पूरी आयतें पढ़ेंगे तो मजमून इकट्ठा समझ आ जाएगा, कर दिए। लेकिन और जहां लफ्ज तकोनी को हाईलाइट कर लीजिए, तकवा ही वो चीज है जो लोगों को जोड़ता है। सारे रसूलों को मुश्तरिक पैगाम दे दिया गया, एक उम्मत बन जाओ और तकवा इख्तियार कर लो, क्योंकि तकवा की बुनियाद वाली दोस्तियां कियामत के दिन काम आएंगी। सूरह ज़ुहरा 567 में आता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन अदू, आज बड़े गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे, हाँ मगर इल्लल मुत्तकून, मगर मुत्तकी। क्यामत के दिन दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जिन दोस्तियों की बुनियाद तकवा के लिए होगी तो वो वहां जुड़े रहेंगे। तो गोया कि आप कह लीजिए कि एक अल्लाह पर मुत्तफिक होना ये तकवा है। यानी आप तत्तकून के नीचे, फत्तकूनी के नीचे लिख लीजिए तवहदूनी, मुझे एक मानो, तौहीद मानो, क्योंकि एक रब का बनने से ही आपस के इख्तलाफात खत्म होते हैं। अब रसूलों की तालीमात बिल्कुल वाज़े थी, लेकिन उनके मुत्तबेइन ने क्या किया, उन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे, आयत 53, फतकत्तौ अमरहुम, लेकिन लोगों ने अपने मामले को अपने बीच में तकसीम कर लिया, बैनहुम ज़ुहुरा, टुकड़े टुकड़े करके। या लिखिए अमरहुम में अमर से मुराद दीन है, यानी उन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। और कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह के लोग जो कुछ इनके पास है इस पर इतरा रहे हैं। टुकड़े से यहाँ क्या मुराद है, मुख्तलिफ नाम, जैसे यहूदियत, ईसाइयत और फलां 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 के नामों पर जो उम्मतें बटी, तो उन्होंने अल्लाह के उस मौजूदा दीन को अलग किया। पहले दीन के हिस्से बखरे किए, फिर हर एक के हाथ में एक टुकड़ा आ गया, और जिसके पास जो टुकड़ा आ गया वो उसी पे खुश हो गया। ये कब होता है, जब दीन ख्वाहिशों के अंदर आ जाता है, यानी जब दीन पर हवा का तसल्लुत हो जाता है ना, तो दीन की रूह खत्म हो जाती है। इमेजिन कीजिए अपने जिस्म को, आंखें हाथ कान सब जुड़े हुए हैं ना, आप जरा अपनी एक उंगली तो खींचे, चोट पड़ती है, कोई आंख हमारी निकाले दर्द होगी, ये होगा ना। अब आप किसी मुर्दे को सामने लाए, कोई कैंची से मुर्दे की उंगली काटे, जाहिर हमें तो नहीं दिखता कि उसको दर्द हो रही है, और हो भी रही है तो वो रेजिस्ट नहीं करता। हालांकि हदीस में आता है कि जो जिसने मुर्दा की हड्डी काटी उसने ऐसे ही जैसे जिंदा की काटी, उनकी रूह को तकलीफ होती है, इसलिए उनको हाथों पे दस्ताने पहन के, रुई बार पहन के हम नहलाते हैं, ताकि उनको सख्त हाथ भी ना हमारे लगे। लेकिन मुर्दे को काटें तो दर्द नहीं होती। अब आप इस बॉडी को दीन समझिए, जब तक दीन की रूह बाकी होती है लोग जुड़े रहते हैं, कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी दीन का अलग करने लगता है ना, तो सब चिल्ला उठेंगे, लोग पूरे दीन की तबाह करते हैं। लेकिन जब जाती ख्वाहिशात, नफ्स के तकाजे और अना तकबर गालिब आ जाता है, तो हर बंदा अपने हिस्से को हाईलाइट कर लेता है और बाकी को छोड़ देता है। सूरत बकरा 83 के अराउंड हम पढ़ चुके हैं। फतूह में नून अभी बा दिल किताब भी बतक फुरू नबी बा। क्या तुम किताब के बास हिस्सों पे ईमान लाते हो और बास को छोड़ देते हो? तो जो कौम ऐसा करेगी फिर उसका नसीब क्या है? इल्ला खिज्जुन फिल हयात दुनिया। ऐसे लोगों को दुनिया में जिल्लत मिलेगी। तो गोया के जो भी रवैया कौम अल्लाह के दीन और अल्लाह की किताब के साथ इख्तियार करते हैं वही उनका अपना नसीब हो जाता है। जो कुरान को टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं ना उनके अपने भी टुकड़े हो जाते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि दीन फख्र और खुद नुमाई की चीज बन जाती है। ये मैंने किया, ये मेरा काम है, इसका तमगा मुझे लगा दो। याद रखिए जो अल्लाह से डरता है ना वो उसके हर हुक्म को सुनता है और हर हुक्म को मानना चाहता है। जब दिलों से तकवा निकल जाता है, अल्लाह का डर निकल जाता है, तो अपनी पसंद और नापसंद को सामने रखकर नेकी के मौके को इंसान जाने देता है। मिसाल देती हूँ कि आपके पास जो हॉल है, आपकी क्लास सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, इसके पहले भी खाली है, इसके बाद भी खाली है। अगर तो अल्लाह का तकवा होगा तो कोई बंदा आ जाता है कि जो ही आपकी क्लास खाली होती है, अब 3 बजे से हमें टाइम दे दें, हम 2 घंटे यहाँ बच्चों को पढ़ा लें, हम कुछ और कर लें, बस यहां से आप समझें। अगर तो अल्लाह का तकवा है, और अगली आयतों में जब पढ़े कि सारे लहू फिल खैरात, अपना सदका जारिया बढ़ाना है, अपने लिए खैर और इंसानियत से मोहब्बत है, आप कहेंगे श्योर बिस्मिल्लाह कीजिए। हमारा क्या कहता है, हाँ जिस वक्त पे हम पढ़ रहे हैं उस वक्त मजबूरी है, हम आपको नहीं करा सकते। ये तो है उस शख्स की खूबसूरत तस्वीर कि जो अल्लाह के तकवे के साथ दीन का काम कर रहा है। और अगर दूसरी सूरत रखे जिसका यहाँ जिक्र है, अच्छा कौन पढ़ाएगा इधर, ये कौन सा गिरोह है जो हमसे 3 से 5 का वक्त मांग रहे हैं, उनका मसलक क्या है, वो किस सोच है, किस नाम से काम करेंगे, अच्छा इधर करेंगे तो क्या होगा वो होगा, ये इतनी बातें। फिर उसमें शूरा आ जाती है, फिर मैनेजमेंट आ जाती है, फिर ऊपर से फैसला लेना है, नेकी का मौका चला जाता है, वो लोग उधर से उठ के कहीं और जाके वो काम करते हैं, उस जगह के नसीब में वहां की खैर नहीं होती। ये है इस आयत का थीम। जब लोग दीन की रूह, और दीन की रूह क्या है कि मैं किसी तरह से बच जाऊं, कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के पास आऊं तो मेरे पास नेकियों का ढेर लगा हो, मन पसंद नेकियां हो, ये नहीं लाजमी, क्योंकि अगली आयतों में हम खुद बहुत ये मजमून पढ़ते जाएंगे। आयतों से ये बात समझ आ जाती है कि लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटते हैं और फिर हर फिरका अपने ही नाम पे खुश है। ये आयत जो कुरान पाक में 3 दफा मेरे ख्याल में कि कुल्लु हिस्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, सूरह रूम में भी आएगी, हर फिरका हर जमात अपने ही नाम पे खुश है। छोटी छोटी बातों पे कटते हैं, फिर उनको हाईलाइट करते हैं, फिर उसी की बेस पे जन्नत और जहन्नम के फैसले करते हैं। आज हमारा क्या मसला है? देखिए थोड़ा सा इख्तलाफे राय हुआ और उसकी बुनियाद पे हम कट जाते हैं। बस आप देखिए कि आप यहाँ बैठे हुए, मैं आपसे कहती हूँ कि चले ऐसा करते हैं कि इस वीकेंड पे हम पिकनिक पे जाते हैं, आपकी क्या राय है? अब आप में से कोई कहते हैं ईस्ट लंदन जाते हैं, कोई कहता है वेस्ट जाते हैं, कोई कहता है मैनचेस्टर जाते हैं। अब क्या ये इख्तलाफ हो गया, क्या फूट पड़ गई आपके अंदर? नहीं, ये इख्तलाफी राय है, ये डाइवर्सिटी है। आपने राय दी है, आप में से हर एक का मिजाज फर्क है, आपकी चॉइस फर्क है। ये छोटी छोटी बातें जो आज आपको उम्मत में लोगों में दिखती हैं, ये फिरके नहीं होते। बाज दफा फिकी बातें नमाज पढ़ने के तरीके में और कई चीजों में, तो ये फिरके नहीं होते। फिरका कहाँ होगा? जहां अकीदे का बिगाड़ होगा। ये भी समझ लें, ये छोटी छोटी बात पे तफरका और फिरका अलग कर देना ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। बर्दाश्त की कमी हो गई आज, आज उम्मत मुस्लिमा में बर्दाश्त का मसला बहुत बड़ा मसला है। इख्तलाफ कहाँ होगा? बस मैंने आपसे कहा कि पिकनिक पे जाते हैं, ये है वो है। अब आप में से कोई उठ के खड़ा हो जाता है, जरूरत ही कोई नहीं जाने की, मैं तो वॉकआउट करूंगा और मुझे तो मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ, वो उस पूरी कॉज के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि ये तो शक हो गया। अदरवाइज इधर नहीं उधर, उधर नहीं इधर, फिकी बातों को बर्दाश्त करना है और अकीदे के इख्तलाफ को कतन कतन जगह नहीं देनी। आज दो एक्सट्रीम है हम मुसलमानों में, एक तरफ तो मुनकरे हदीस को भी कहते हैं ही मुसलमान, एक तरफ सहाबा और सहाबा के नाम के साथ गालियां देने वालों को भी हम मतलब पक्के मोमिन साबित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह को मानते हैं, रसूल को नहीं मानते, रसूल को ही मानते हैं तो अल्लाह को नहीं मानते, उनके साथ भी बड़े प्यारे हाथ मिलते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ इतनी सी बात पे कि नमाज में हाथ ऊपर बांधने के नीचे बांधने, हम अलग मस्जिद और अलग फिरका बना लेते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, इस तरह कटेंगे तो दुनिया में कभी भी पनपेंगे नहीं। ऐसे लोगों की जिंदगी में भी दीन नजर नहीं आता। दीन में हमारी जिंदगी के हर मसले का हल दिखता है, अगर हम ग्लासेस लगा कर देखें तो। लेकिन कुछ लोगों को जब दीन पर तनकीद नजर आती है, यानी दीन की रोशनी में अपने तर्ज जिंदगी में तनकीद दिखती है, तो भी वो उस हिस्से को अलग कर देते हैं। तो दो बड़ी वजूहत है फिरकेबाजी की, दो बड़े 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 आप इख्तलाफा देख सकते हैं। एक तो है दीन के नाम पर, और एक है दुनिया की ख्वाहिशों के नाम पर। दीन वालों का जो इख्तलाफ होता है ना, उसमें अक्सर अना आ जाती है, ईगो। बस आप देखिए कि आज अगर मिसाल है 10 मुख्तलिफ नाम है हमारे मुसलमानों में, जो खुद को मुसलमान भी कहते हैं लेकिन नाम मुख्तलिफ है। आप बैठ जाते हैं सबको लेकर, सऊदी अरब चले गए, किसी बड़े आलिम को बिठाया बीच में, आप कहते चलो भाई तुम 10 जमातों और ग्रोह हो, आओ तुम एक हो जाओ। सब चाहेंगे, बिल्कुल होना चाहिए, सब एक हो जाए। आपको चाहिए 10 बड़े लीडर कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जी, 10 क्या हो, कोई एक नाम चूज करो। तो वो जो एक है ना, वो कहेगा जो मेरा नाम है वो सबका कर दो, सबको एलिनिस कर दो। वो कहेगा सबको ब्रेलवी कर दो। वो कहेगा सबको देवबंदी कर दो। कोई भी नहीं मानेगा। देवबंदी ब्रेलवी का नाम क्यों कबूल करे? एक नाम है जिसको सब मान लेंगे। सूरत हज के आखिर में पढ़ चुके हैं, हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सारे इख्तलाफात का हल अपने आप को कुरान और सुन्नत से जोड़ना है। आज आप किसी भी मसले को देखें तो वो कहते तो आगे यही है ना कि हम कुरान और सुन्नत से तो लाते हैं ना, तो भी कुरान और सुन्नत को ही मान लो। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिसने पीछे किया हुआ। हम पहले दूसरों को अपने से अलग फिरका साबित करते हैं, फिर उनको जन्नत से एक्सपेल करते हैं, और कहते हैं कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला अना, जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा सिवाय मेरे। तो पीछे आपको एक दफा सुनाया था ना कि एक ही मसलक के दो नुमाइंदे थे, तो आपस में बातें कर रहे थे कि कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। फला नहीं 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 वो तो जहन्नमी है, फला वो तो काफिर है, फला वो तो बिदती है, फला तो ये है, उसको भी निकाल दिया। पीछे रह गए दो, वो दोनों एक ही ग्रोह के थे। कहने लगा तुम्हारी तो नियत ही मुझे ठीक नहीं लगती, तो तुम तो नहीं जाओगे, रह गया मैं ही जाऊंगा। याद रखिए, ये इस्लाम की सोच नहीं है, और इस्लाम कोई फिरका नहीं है, ये स्टेट ऑफ हार्ट है, ये तर्ज जिंदगी है, तरीका है जिंदगी है। जहां रसूलों के तर्ज जिंदगी पे इख्तलाफ आएगा, वहां से गड़बड़ होगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने आज दीन को चूचू का मुरब्बा बना लिया, अपनी मर्जी से कुछ डाला कुछ निकाला, किसी का दिल चाहता है सियासत हर चीज में डाल देंगे, किसी का दिल चाहता है तो वो तबलीग को सारा दीन कहेंगे, किसी का दिल जाता है वो जिहाद को सब कुछ कहेंगे, बैलेंस दीन को जिस्म नहीं कहेंगे, कान को जिस्म नहीं कहेंगे। तो जब दीन अपने रेशियो पर पोषण के साथ ठीक होता है, तो अल्लाह ताला की मदद बहुत है। हमारे क्या अमल होना चाहिए? सबकी रिस्पेक्ट करें, उनके खिलाफ बोले, वो अपने मसलक के इमाम होंगे, बड़े होंगे, वो हमसे बेहतर ही है, इसलिए हम उसको नहीं कुछ कहते। अल्लाह के नबी सल्लम से भी जब ये सवाल पूछा गया था, तो आपने यही बताया था कि खैरुल कुरून करनी सुम अल्लज़ीन यलूनहुम सुम अल्लज़ीन यलूनहुम, सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, फिर उसके बाद वालों का दौर, यानी सहाबा का, फिर ताबईन, और कहा फिर उसके बाद जितना कोई दूर होता जाएगा उतना ही पीछे होते जाएंगे। हर फिरके से मोहब्बत ने दूसरों को दीन से ही निकालने की कोशिश कर दी। अब करें क्या? मेरा और आपका ऐसे लोगों से क्या मामला होना चाहिए जो खुद को किसी मसलक से जोड़ते हैं? फरमाया फजर हो, छोड़ दो उनको, इनको छोड़ दो। अब यहाँ छोड़ दो से मुराद ये नहीं है कि इनको तबलीग करना छोड़ दो, बल्कि मुराद ये, इधर लिखिए जर हम से मुराद इधर ये कि इनको मोहलत दो। फी गम रहती है इनकी गफलत में, हत्ता हीन, एक खास मुद्दत तक। यानी ये जो कह रहे हैं इनको करने दो, ये मानेंगे कोई भी नहीं, इनके दिल में ये ख्याल ही नहीं आता कि हमने अपने आप को चेंज करना है। और याद रखिए, जो खुद को बदलना नहीं चाहता, आप उसको 100 साल भी किसी मशीन के अंदर डाल देंगे, जब निकालेंगे तो वो वैसे का वैसा होगा। तो अल्लाह तआला कहते हैं ये नहीं मानेंगे। सीधे साधे भोले भाले लोग मान जाते हैं, पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर वो चीज जा चुकी होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। फी गमरतिहिम, ये जो लफ्ज गमरा आया है ना, गमर से है, इतना गहरा पानी कि जिसकी तह भी नजर ना आए। यहां इससे मुराद जहालत है। जहालत में इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती। आम लोगों को दीन पर लाना आसान है, लेकिन जो पहले से किसी और दीन पर हो, इनको सीधे रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है। और खास तौर पे जो किसी मसलक का नाम अपने नाम के साथ लगा लेते हैं, वो बुत नहीं टूटता। सबसे मुश्किल बुत मसलक का बुत है, दीन के नाम से। सूरह तारिक में आता है, फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ऐसे नाफरमानों को, ऐसे काफिरों को मोहलत दे दो, मोहलत देना यानी ऐसे लोगों को छोड़ दो इनके हाल पे। सूरह इब्राहिम आयत 30 में आता है, कुन तमत्ताओ, इनसे कह दो थोड़ा सा फायदा उठा लो, फइन्ना मसीरकुम इलन नार, फिर तुम्हारा ठिकाना आग है। सूरह हिजर आयत 3 में हम पढ़ चुके, जरहुम याकुलू व यतमत्ताओ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। छोड़ दो इनको, खाएं और मजे करें, और इनको गाफिल करते लंबी आरजुएं, अन करीब इनको पता चल जाएगा ये करते क्या है। तो लिहाजा ऐसे लोग जो हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी मर्जी का दीन बना लिया। और कब तक छोड़ो, हत्ता हीन, एक मुद्दत तक, एक खास वक्त तक इनको छोड़ो। मतलब ये है कि जब अल्लाह का फैसला आएगा, अल्लाह ताला खुद ब खुद फिर इनसे पूछ लेगा, और इनका वक्त करीब है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला न पकड़े। और आप याद रखिए कि जिस दौर में मुसलमान तफरकाबाजी का शिकार हुए, उसी दौर में मुसलमान दब गए। तारीख पढ़ लीजिए, आपको मैंने एक जगह हिस्सा सुनाई थी स्पेन के जवाल की वजह। तो स्पेन के जवाल की वजह क्या थी? फिरका वारियत थी। जो बड़ी रियासत थी मुसलमानों की, वो छोटे टुकड़ों में बटी। क्रिश्चियंस ने दिन ब दिन जमीन के वो टुकड़े खरीद लिए, और मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों को फायदा देने की बजाय कुफार के हाथों को बेच लिया। और अखीर में जब खुद थोड़े से रह गए, तो वो जिन्होंने पहले किसी को खरीदा तो उन्होंने उसको भी किक आउट किया, और सारे मुल्क में मुसलमानों को निकाल कर क्रिश्चियंस की हुकूमत हो गई। आज के दौर का भी हमारा सबसे बड़ा मसला तफरकाबाजी है। अव्वल तो लोग दीन पे आते ही कोई नहीं, और आ जाएं तो फिर समझ नहीं आती कि किस दीन पे आए और किधर आएंगे। तो दुआ कीजिए, आज के दौर का जिहाद है। अभी मैंने ऑनलाइन पे भी कल देखा, अभी लेक्चर डला हुआ है कि कुरान पर अमल करने के 5 महाज। अभी इस दफा एक ट्रिप में भी, इस ट्रिप में भी एक जगह दर्श इस पे हुआ, तो उसका सबसे बड़ा महाज आज के दौर का ये है, जब हम कुरान पढ़ के बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने फिरका वारियत का बुत खड़ा होता है। इससे निकालने के लिए सच्चा सीधा सादा इल्म लोगों के अंदर आम करने की जरूरत है। और अगर आज हम ये काम करके कोशिश कर ली, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इसकी कदर जरूर करेगा। और जितनी ज्यादा हमारी नीयत अच्छी होगी, अल्लाह ताला मदद करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में अल्लाह ने ऐसे उलमा को उठा दिए, अब थक गए लोग लड़ लड़ के। आज के दौर में वाकई ऐसे क्लीन एंड क्लियर सोच ले, बस हर सोच के, उर्दू इंग्लिश और बाकी जुबानों में भी यकीनन होंगे, ऐसे लोग सामने आ गए हैं। और खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स, वो इन फिरकों को नहीं मानते। वो कहते हैं छोड़ो, ये जो भी बात है इनको करने दो, हम इन चीजों पे गौर नहीं करते। फिर इसी तरह अल्लाह तआला देखिए कैसे लोग, अब आप अगली आयतों को सुनते वक्त सोचिए, जो फिरका वारियत में खो गए उनके लिए अल्लाह तआला का फैसला क्या है। क्वेश्चंस है कुछ, हर आयत सुनते वक्त जरा क्वेश्चनिंग स्टाइल को ध्यान में रखिएगा। पहली बात हमें कह दी छोड़ दो इनको, ये अपनी जहालत में पड़े रहे एक मुद्दत तक, ठीक है। आगे आयत 55 में, अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनको माल और बेटों से मदद दिए जा रहे हैं। जितना कोई अल्लाह का दीन छोड़ता है ना, अल्लाह ताला उतना ही उसको दुनिया से नवाजता है। ये अल्लाह ताला की एक सजा होती है जो बंदे के हक में साबित हो जाती है। जो लोग एक सच्ची दावत को मानने की बजाय अपनी मर्जी के काम करते थे, दिन रात उनके घर माल भी ज्यादा हो रहा है, बेटे भी ज्यादा हो रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या ये इनका गुमान है? डू दे थिंक, क्या उनकी ये सोच है कि हम उनकी मदद करें? ये जो नुमिद्दू का लफ्ज है, ये मद्दा से है, नीम दाल दाल, मदद करना भी लफ्ज इसी से है, कि क्या हम इनकी मदद कर रहे हैं माल और बेटों से? अबू जहल को और अबू लहब को और अबू उतबा शैबा को अपने माल और अपने बेटों पे बड़ा मान था, तो क्या ये सोचते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं? नुसारी लहुम फिल खैरात। इसके अगर आप छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा लें तो आपको इस सेंटेंस की रूह समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है, नुसारी लहुम फिल खैरात, तो हम इनकी भलाई के लिए कोशिश है, यानी इनका ख्याल है कि अल्लाह ताला इज डूइंग वेरी गुड विद देम, कि अल्लाह इनको खैर देना चाहता है? नहीं, बल्ला यशुरून, बल्कि ये लोग तो जानते भी नहीं है। यानी ये जो गलत फहमी है उसकी वजह क्या है कि इनको एक गलत फहमी हो गई, और वो क्या है कि ये लोग अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमतों को आजमाइश की बजाय इनाम समझ रहे हैं। ऐसे नाफरमानों को माल और औलाद जैसी नेमतें जब मिलती हैं तो ये सोचते हैं कि अल्लाह का इरादा हमारे साथ भलाई का है, हालांकि ये इनके लिए अजाब का जरिया बनेगी। आपको याद होगा सूरत तौबा में आयत 55 में बिल्कुल यही बात हम पढ़ चुके, फला तुजिब का अम्वाल हूँ वला औलाद हूँ, आपको इनके माल और इनकी औलाद ताज्जुब में ना डाल दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज्जिबहुम बिहा फिल हयाते दुनिया, अल्लाह तो चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब दे। वतज़हक़ अन्फुसुहुम वहुम काफिरून, और इनकी जानें भी निकले इसी हालत में कि वो कुफर में हो। इसी तरह फिर सूरह तौबा की आयत 85 में यही बात थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ आई, तो पता क्या चला कि जब नाफरमानियों के साथ किसी को दुनिया मिलती है तो ये नाम नहीं है, ये सजा है। सूरह अलनाम की आयत 44 किसी को याद है? फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब वो भूल गए उस नसीहत को जिसकी उनको नसीहत की गई थी, तो अल्लाह तआला कहते हैं, कशफना अलैहिम अबवाब कुल्ल शय, हमने उन पर नेमतों के दरवाजे खोल दिए, और जब खूब नेमतें मिली वो फलने फूलने लगे तो अचानक हमने उनको पकड़ा और खींच लिया। याद रखिए, नाफरमानियों के साथ किसी की दुनिया बढ़ती देखें तो ये आजमाइश है। अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, किसी ने उनको सताया, दुख दिया, तो इन्होंने उसको क्या बद्दुआ दी कि अल्लाह तुझे सेहत और दौलत के साथ लंबी उम्र दे, ये दुआ थी। लेकिन असल में आप देखिए कि सेहत भी है, दौलत भी है, और तू और फिर बुरे काम करेगा ना, कि मुझे मुझसे अल्लाह खुश है तो वो है। आज भी आप देखिए किसी को नाफरमानी के साथ नेमतों में देखे तो हम क्या कहते हैं, नहीं कोई जरूर इसकी नेकी होगी जो इसके काम आ रही है। हम अल्लाह सुबहाना ताला का ये फलसफा अगर समझ जाए, कभी भी किसी नाफरमान को फलता फूलता देखकर हमारे मुंह में पानी ना आए। आज भी आप देखिए कि दुनिया में कुफार को फलता फूलता देखते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि ये इनको इनके कुफर के साथ मिल रहा है तो इनका कुफर अल्लाह को भी बड़ा इनोसेंट लगता होगा, ये बहुत नाइस लोग हैं, वेरी स्माइली, तो अल्लाह ताला इनको दे रहा है। नहीं, कुफार के साथ तो मामला थोड़ा सा फर्क है। नॉन मुस्लिम्स जो दुनियावी एतबार से मेहनत कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, हक नहीं मारते किसी का, अदल करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जो दुनिया में मिल रहा है ना, ये इनकी नेकियों के बदले में मिल रहा है, ये समझिएगा। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि किसी कोई हुकूमत कुफर पे कायम रह सकती है, जुल्म पे कायम नहीं रहती। अब कुफर पे कायम कैसी कि एक मुल्क है वहां कुफर है, चर्चिज हैं और जो कुछ भी कह ले, रह लेगी, अल्लाह बेनियाज है मेरे साथ, जिसको मर्जी शरीक करो मुझे परवाह नहीं। लेकिन अगर उसी मुल्क में है वो नाम मुसलमानों का मुल्क, मुल्क मुसलमानों का, रहते मुसलमान है लेकिन वहां गरीब पे जुल्म हो रहा है और वहां क्लास सिस्टम है, तो जुल्म हुआ ना तो वो मुसलमान मुल्क तबाह हो जाएगा लेकिन वो काफिर मुल्क आबाद हो जाएगा। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि इंसान इस चीज का शौर इख्तियार करे। ला यशुरून, ये बहुत बड़ी सजा होती है। मुनाफिकों के सिलसिले में सूरह बकरा में मुनाफिकों के तस्करे में हमने 2 दफा पढ़ा था कि वह हमला यशुरून, एक शख्स गलत हो और उसको सजा मिले, बहुत सिक्योर है, फौरन सोचेगा मैंने कोई गलती की है जिसकी मुझे पकड़ हुई है। लेकिन एक शख्स हो गलत और मिल उसको दुनिया जाए तो खुशफहमियों में मुबतला हो जाता है। इनके कुफर और शिर्क और इनके तफरकाबाजी और इनकी कर्म इल्मियों में डूबने की वजह से मजीद हक को नहीं पा रहे और समझते क्या कि अल्लाह हमसे बहुत खुश है। देखिए अगर गमरा समझ गया ना जहालत, तो ये दोनों आयतें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। पानी को जहन में लाइए, पानी क्या है? दुनिया का इल्म जमाल है। अब इस पानी में डूब गए, सुबह दुनिया, शाम दुनिया, रात दुनिया, खुशियां दुनिया की, गम दुनिया के, वो दुनिया जो पहले ही सर तक आई हुई है उसको और लेना चाहते हैं, उसी में डूबेंगे ना। पानी थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, घुटनों तक हो जाएगा और जरा और पर आए, आप सोचिए आप डोलने नहीं लगेंगे। और अगर वो आपके सीने तक आ जाए तो आपको खौफ क्या आएगा कि जरा सा भी झुकी तो मुंह में आ जाएगा। अब वही पानी आप और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो वो तो फिर आपके गले में आएगा, उसी के गोते लगेंगे, वही आपकी ऑक्सीजन बंद कर देगा। ये है आज बहुत सारे लोगों का मसला। फी गमरतिहिम, अल्लाह तआला कहते हैं हत्ताहीन, आज दुनिया जो पहले ही बहुत थी, दूसरों को तो छोड़ दे, ये किसी बिलियनेरियन की बात नहीं हो रही, ये बिल गेट के यहाँ कितने बड़े की बात नहीं हो रही, ये हम सब अपनी अपनी बात करें। हमारे पास क्या कमी है? हमारी 10 नस्लें भी खा सकती है, हमारे पास इतना है। आज से हम अगर फैसला कर लें कोई कपड़ा नहीं सिलाना मरते तब तक, यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे पास हम कभी बरहना नहीं होंगे इंशाल्लाह। ना आज के कपड़े फटने वाले, ना आज के कपड़े कोई खराब होने वाले। खाना जो है ठीक है, आपकी पसंद के टेस्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन जितना माल है हम रोटी कपड़ा खाना आराम से जिंदगी भर कर सकते हैं, फिर भी रोग यही दिल को लगे हुए हैं। इतनी दौलत है संभाली नहीं संभल रही, गम हर वक्त चोरों का पड़ा होगा, उसी चीजों को संभालते रहते हैं, फिर और बनाने के लिए उसी के गम में हम नमाजें भी छोड़ते हैं, उसी के लिए हमारी क्लासेस भी छुटती हैं, उसी के गम में हम पड़े रहते हैं। मुझे हैरत होती है उस मर्द पे कि जिसके पास करोड़ों हैं और हई अल सलार हई अल फलाह की आवाज पे फिर उसकी गाड़ी नहीं रुकती, और एक बेगम का फोन आ जाएगा ना बीच में कि जरा बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आए, तो वो उसके लिए गाड़ी रुकेगी। पहले से सोचा हुआ, डिसाइडेड है, ये है ला यशुरून। और ये नजर जब मिल जाती है तो वल्लाह ही इंसान के जीने और मरने का अंदाज बदल जाता है। सूरह कहफ आयत 36 में भी हमने बाघ वाला किस्सा पढ़ा था ना, क्या उस शख्स की सोच थी, वलई रोदित इला रब्बी लाजिदन्ना खैरा मिन्हा मुनकलबा, अगर बिलफर्ज मैं अपने रब की तरफ पलटा भी दिया गया तो मैं इससे भी बेहतर पा लूंगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह की रजा के साथ मिले। हाज़ मिन फजली रब्बी लिख लें घर के बाहर, कोई पता नहीं कि यह हाज़ मिन फजली रब्बी है या हाज़ बलाउ मिन रब्बी है, हाज आजमाइश में रब्बी है। यही गलत फहमी मक्का वालों को थी, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, काबा के मुजावर हैं, हम बहुत सखी। आप पता है कि जब से सल्लम के दादाओं में हाशिम नाम के शख्स गुजरे ना, हाशिम कहते रोटियां तोड़कर गोश्त में भिगो के खिलाने वाला, चूरा चूरा करने वाला, सिर्फ इसलिए इनका नाम हाशिम था कि बाहर से मुसाफिर आते थे उनको गोश्त तो रोटी खिलाता था जी शख्स, वो इससे बड़े खुश थे। अल्लाह के नबी की नबूवत पर उनको एतराज क्या था कि ये यतीम शख्स और जिसके पास चीजें ही नहीं है अल्लाह इसको नबी बना रहा है, हमें मिलती तो किसी इस मक्का के दौर में। अल्लाह कहते हैं डूबे होते हैं दुनिया में और मौत का पंजा आदब होता है, बल्ला यशरून, समझ नहीं आती। डेथ बेड पे भी उनको उस वक्त भी यही जमा तफरीक पड़ी हुई है कि हमारे साथ क्या होगा। तो अल्लाह ताला यही बात करके अब एक दूसरा किरदार हमें देते हैं और दुआ करें कि मैं और आप इस किरदार के ऊपर फिट हो जाएं। एक वो है जो दुनिया कमाते रहते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया, उनका मामला दुनिया का है, लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा गिरोह है। आयत 57, इन्नल्लज़ीनहुम मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, यकीनन वो लोग जो अपने रब के खौफ से लरजाओ तरसा रहते हैं, खौफ इनके अंदर, मुशफिकून शफका से, ऐसा डर जिसमें मोहब्बत भी हो। शफकत का लफ्ज सुना ना उर्दू में, वही है। आप शफक का वक्त कौन सा होता है? जब सूरज डूब रहा होता है और अंधेरा छा रहा होता है, उस वक्त आसमान पे कितने रंग होते हैं, कई रंग है ना, बस वही लफ्ज है शफक का, जिसको आप कहेंगे ना ट्वाइलाइट, इस तरह ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग, एक गम लगा हुआ है कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसकी मोहब्बत मुझसे छूट ना जाए। अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा, ईमान का नाम है, अंदेशे लगे हुए कि हमारा कोई काम अल्लाह को बुरा ना लग जाए। ये है असल में कद अफलहल मोमिनून की, वो लोग कि जिनके दिल रब के खौफ से कांपते हैं, वल्लज़ीना हुम बी आयात रब्बिहिम यूमिनून, और वो अपने रब की आयतों पर ईमान भी लाते हैं। तीसरा इनका वसफ क्या है, वल्लज़ीना हुम बी रब्बिहिम ला यशरिकून, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। कौन सा शिर्क है यहाँ? माल का शिर्क, औलाद का शिर्क, मादा परस्ती का शिर्क। आप देखिए तकरार के साथ इन सूरतों में शिर्क का रदार, तो शिर्क के कई मुख्तलिफ रूप होते हैं। सिर्फ बुत परस्ती के शिर्क से बच के तो महफूज नहीं हो जाते। एक सच्चा मोमिन शिर्क की हर किस्म से अपने आप को ऐसे ही बचाता है जैसे लोग जरासीम और बीमारियों से खुद को बचाते हैं। इस तरह इंसान अपने आप को दे। बात के बाद चौथी, फिर इस पर हम इकट्ठी बात करेंगे, वो लजीन यूतू नमा अतो, और जो देते हैं, जो कुछ देते हैं, यानी क्या देते हैं, अल्लाह ने भी नहीं उनका पोल खोला, छुपा के देते हैं, बताए बगैर देते हैं, मौका मिले तो बताने का तो बता भी देते हैं, और हिसाब करके नहीं देते, तो जो भी देते हैं और छोटे से छोटा जो भी देते हैं। इसके बावजूद वह कुलूब हों वजीला, इनके दिल धड़कते रहते हैं, दिल डरते ही रहते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। क्या सिफत आ गई, अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने वाले, देना देना देना, और दे के कोई एहसान कोई नहीं, कोई जतलाना कोई नहीं, कोई रोब नहीं डालना, हमने इसलिए दिया था, अब ये नहीं हुआ, अब वो नहीं हुआ, हर वक्त उनको गम गम लगा हुआ कि मैं दे दूं मैं दे दूं, जो दिया ये थोड़ा तो नहीं, और खदशा क्या है कि कहीं खलूस की कमी ना गिनी जाए, कोई कोताही ना हो जाए, दे के कोई बीच में एहसान ना जतला दूं, बस अब दे के पीछे ना आ जाऊं, और दे के बैठेंगे कि चलो पैसा तो दे दिया है ना, नहीं, बोला यु सारे हो न फिल खैरात, ये वो लोग हैं जो भलाइयों में कोशा हैं, इनकी असल दौड़ माल कमाने की नहीं, नेकियां कमाने की है। सिर्फ एक नेकी के बाद मुतमईन और मसरूर होके नहीं बैठ जाते कि ये नेकी तो कर रहे हैं अब और क्या करूं, नहीं बल्कि और भागते हैं, वहुम लहा साबिकून, और वो तो उनके लिए सबकत करने वाले, इनकी जिंदगी का मकसद एक ही है, नेकियों और भलाइयों के लिए भाग दौड़। वो कहते हैं ना, हम तो इसलिए जीते हैं कि इस जहां में तेरा नाम रहे। ये सिर्फ दुनिया की एक कैट रेट में और रैट रेस में नहीं चल रहे, ये नेकियों के मुकाबले करने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो हम लहा साबिकून, ये आगे बढ़ जाएंगे, आज पीछे हैं कल जन्नत में, ये 500 साल पहले और पहुंच जाएंगे दूसरों की निस्बत। ये तो अपनी पूरी जो हक के साथ बोलती है, कौन सी किताब, कुल इंसान है ना उजमनाहु ताइरहु फी उनुक वनुक्री लहु यौम अल कियामती किताब यलकाहु मंशूरा। कहाँ पढ़ा, सूरह बनी इसराइल का आयत नंबर 12। तो ये तुम्हारी गर्दनों में किताब लटक रही तो इससे मुराद नामा है, तुम जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो, जो नहीं कर रहे, जो कर रहे थे नहीं किया, कर सकते थे नहीं किया, और नहीं कर सकते थे एक रिस्क लेकर जान पे लगा के कर लिया, आजादियों में करते थे, आप पाबंदियों में कर रहे हो, अच्छे हालात में करते थे, आप बुरे में कर रहे हो, वलदई नाम किताब, हमारे अकाउंट्स बड़े एक्यूरेट है, और ये किताब हक के साथ बोलती है। देखिए लफ्ज यंतिकु है, नुतुक कहते हैं बोलने को, किताब क़यामत के दिन ऑडियो फॉर्म में आएगी। आज रिवाज है ना कि ये आपकी हार्ड कॉपी है, कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी है, और अगर आपके ऑडियो कॉपी चाहिए तो वही किताब पूरी पढ़ के किसी ने बोली होती, आप सुन लें, आज ऐसी चीजें मौजूद है। इससे पता चलता है क़यामत के दिन खामोश कागजों में नामे अमाल नहीं दिया जाएगा जाके पढ़ लो, बल्कि टेप रिकॉर्डर चल रहे होंगे कि तुमने कल क्या किया था, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म न किया जाएगा। हर शख्स का नाम है अमाल, जिंदगी भर के अमाल और अफाल की जुजियात तफसीलात, एक हरकत एक अमल, उसकी कोशिश, उसके आंसू, उसका गम, उसका हम। आज कंप्यूटर की जुबान में ये क्या मुश्किल है, आप एक डॉट भी डालते हैं ना तो फिगर बदल जाता है, कैलकुलेटर पहले इजाद हुआ तो लोग कहते थे ये बहुत बड़ी चीज है, अब कैलकुलेटर की भी आगे 10 किस्में निकले। अल्लाह ने इंसान के जीन्स के अंदर की छुपी हुई चीजों को भी नोट करके पेश कर दिया, तो कयामत के दिन क्या वो उसके अमाल को पेश नहीं करेगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना सूरह बनी इसराइल आयत 84 में, कुल्लु यामलु अला शाकिला, हम में से हर एक की शाकिला फर्क है, पूरी कोशिश के बावजूद आप मैं नहीं बन सकती, मैं आप नहीं बन सकती, आपकी बड़ी बेटी छोटी और छोटी बड़ी नहीं बन सकती। अल्लाह ने हर एक को एक खास बस लिमिट देकर पैदा कर दिया, इसलिए ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि क्या कर सकते थे और नहीं किया। आप देखिए एक शख्स 5 नंबर लेता है, टोटल कितने थे 5, वो क्या है, वो फर्स्ट है, 5 में से 5 नंबर फर्स्ट, दूसरा भी 5 ही ले रहा है वो फेल, तो 5 का अदद तो कुछ ना हुआ ना। अल्लाह ने कयामत के दिन हमारी कोशिशें देखनी है, आउट ऑफ यानी लफ्ज आउट ऑफ लिख लीजिए, व्हाट यू हैव डन ये नहीं पूछा जाएगा, आउट ऑफ व्हाट कर सकते थे हमने की 5, हम 50 का नोट डाल सकते थे हमने डाला ही 5 का। अल्लाह कहते हैं हमारी नजर तुम्हारे एक एक फिगर पे, तुम्हारी कोशिशें 4 घंटे की थी लेकिन हमें पता कि तुम हफ्ते में आराम से 40 घंटे काम कर सकते थे, क्योंकि दुनिया वाले भी 40 घंटे करते हैं, तुम 4-5 घंटे में क्यों थके। इतना बड़ा ये धोखा है ये दुनिया, हम सोचते हैं सबने मरते ही एक हो जाना है, इस दुनिया में तुम एक है नहीं है। आज आपका टेस्ट हुआ, क्या आप सब कहीं के कितने नंबर आने हैं, और जिसके पूरे आने हैं और जिसके पासिंग मार्क्स आने हैं सिर्फ, क्या ख्याल है कि पूरे आने वाला बहुत अकलमंद है और जो सिर्फ पासिंग मार्क्स है वो बहुत बदबخت है। नहीं, उसकी एफर्ट, उसके हालात, उसकी जहनी इस्तेदाद, उसकी उम्र, उसका बैकग्राउंड, वो सारा देख के हो सकता है 10 नंबर वाला कयामत के दिन 25 नंबर वालों से बहुत ऊपर हो जाए। कितना जरूरी है हम अपने आप को छान फटक के सामने रख दें। वही मुझे बात याद आ जाती है अबू जर वाली, कि अबू जर कमर को मजबूत कर लो, कश्ती मजबूत कर लो, पानी बड़ा गहरा है, और दिल को ठीक कर लो क्योंकि हिसाब लेने वाली जात बड़ी बारीक बीन है। हम सोचते हैं किसी को कुछ दे दिया ना वो खुश हो गया, वो तो खुश होता है तो वो कहता है आपने उसके लिए गिफ्ट लिया उसको दे दिया, उसको ये नहीं पता कि हम और कितना दे सकते थे और हम अपने लिए कितना लेते हैं, उसको अगर हमने 5-10 का दे दिया तो क्या बड़ा कमाल किया। अल्लाह को जब हम कुछ भी देते हैं, वक्त, सेहत, माल, चॉइस और क्या कुछ देते हैं, अब इसको तो मेरे आगे दोहराने की जरूरत ही तो नहीं है ना, ये सब कुछ तो पता है हम सबको पता है। देखिए पीछे से मजमून चल रहा है, वही बात है गमरतन, आज पूरे सबक में लफ्ज गमरा पे आपने गौर करना है, डूबे हुए हैं इस दुनिया में, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये काम हमसे हो नहीं सकता, क्यों कुछ लोग इतनी नेकियां कमा जाते हैं और कुछ लोग हैं वो सिर्फ दो। बच्चे कहते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे जो नेकियां करके इतना डरते हैं जितना तुम गुनाह करके भी नहीं डरते। इन्हीं का एक और कॉल है, कहते हैं कि मोमिन नेकी भी करता है फिर भी डर, बुराई भी करता है और फिर भी बेफिक्र रहता है, तो कामयाब वो है जो नेकियां करे और अल्लाह से डरे, हज़ब मोमिनून, और नाकाम हुआ है जो गुनाह भी करे और अल्लाह से डरे। एक ऐसा दुनियादारी का शिर्क है कि ऐसे लगता है कि खुली आंखों से दिखता भी नहीं है। मुस्नद अहमद और तिर्मिजी की एक रिवायत का खुलासा, एक मौके पर अल्लाह के नज़दीक लज़ीना मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, और आगे आता है कि वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजीला। तो हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी से मुराद करते हैं शराब पीते हैं यानी गलत काम करते हैं और पहले गलत काम कर लेते हैं फिर उसके बाद अल्लाह से डरते हैं, दिल में तो यही आता है ना। तो आपने फरमाया ओ सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, यहाँ पहले तो आप जरा नबी सल्लम का ताल्लुक अपने ससुराल वालों से देखिए, बीवी के बाप की इज्जत करना ये मुस्लिम कल्चर है, आज हमारे अंदर तो ये बात बहुत ही पीछे रह गई है। कहो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, ये वो लोग हैं कि जिनके दिल में, बल्कि पूरी रिवायत पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, क्या ये वो लोग हैं जिनसे जिना, चोरी और शराबखोरी हो जाती है? लेकिन इन दिल में खौफ इलाही होता है। आपने फरमाया, सिद्दीक की बेटी ये वो नहीं, बल्कि ये वो हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदके करते हैं, लेकिन कबूल ना होने के डर से डरते हैं। यही है वो लोग जो नेकियों में सबकत करने वाले। तिर्मिज़ी की रिवायत है। हम अपने आप को पूछे, हमारे अंदर क्या बेखौफी भरी रही है? अब तो कोर्स भी कर लिए, अब तो हम ये भी कर रहे हैं, अल्लाह कहते निसा बेकून, ये बढ़ जाएंगे आगे। दो मुख्तलिफ किरदार, दो मुख्तलिफ अंजाम है। और रह गई बात कि अगर इस दुनिया में कुछ कमी बेशी रह भी गई, तो जाना तो इला रब्बिहिम राजिऊन, जब रब के पास पहुंचना है तो फिर वहां जाके सारी कमी बेशी पूरी हो जाएगी। तो याद रखिए कि अल्लाह बंदे की वुसअत देखता है। आप देखिए कि तबूक के मौके पे हजरत उस्मान नहीं जा सके, बदर के मौके पे हजरत उस्मान नहीं जा सके, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि उस्मान हमारे साथ है? कोई वादी तुमने तय नहीं की कि जहां उस्मान तुम्हारे साथ ना हो। उस्मान मक्का में थे सुलह उदैबिया के मौके पे, और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ पे दूसरा डाल के कहा ये उस्मान का हाथ है। ये क्यों होता है ना? करके भी लोग वो अजर पा ले, करके हम ना पा सके। ये असल में दिल की क्या कभी अपनी नेकी करने के बाद अपने दिल का जायजा लेना ना भूलें। असल जो दौलत है ना हमारी, वो नेकी करने के बाद के जज्बे करते क्या। और याद रखिए कि कुरान सिर्फ नजर आने वाले बुत नहीं तोड़ता, ना नजर आने वाले बुत भी तोड़ता है। और दौलत और माल दुनियादारी का वो चार पैसे, पैसे तो मैं एक रस्मन बोल रही हूँ ना, दुनिया की इतनी सी खुशी हमें मिल जाती है, इतनी सी, और हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मिसाल है, आपको एक सेलफोन मिल गया नया, उसी को सजाते रहे, पता चला मगरिब की नमाज ही चली गई, ओह भूल गई मैं तो फोन से खेल रही थी। छोटा सा बच्चा आता है हमारी गोद में, अभी पेट में ही आता है, हम उस खुशफहमी में भूल जाते हैं। अल्लाह हमें दुनिया की कोई नेमत दे देता, कोई अल्लाह खुशी की खबर सुना देता है, सबसे पहले उसको छोड़ते हैं। तो याद रखिए कि नेकियों को सजाना है, अल्लाह को पेश करनी है ना, जो देते हैं सो देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सोचता हूँ कि क्यामत के दिन अल्लाह एक पुकार लगाता है कि आज मैं सबको बख्श दूंगा सिवाय एक शख्स के, कि वो एक शख्स उमर बिन खत्ताब है, मिन खशयति रब्बी मुशफिकून। कहते थे कि मेरा एक पाँव जन्नत में और दूसरा बाहर हो, मैं फिर भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा जब तक मेरा दूसरा पाँव जन्नत में न चला जाए। हजरत अली जब अपने वक्त के खलीफा थे, किसी ने उनको ईद वाले दिन पानी में सूखी रोटियां, तो कहा अमीरुल मोमिनीन रोटियां खा रहे हैं। कहा कि मेरे भाई, मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन मेरा रब कहेगा कि अली जा मैंने तुझे माफ किया। ये वो लोग थे जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह के नबी के साथ जिहाद कर करके गुजरती थी, कुर्बानी, जिहाद, हिजरत, ये तीन ही तो मसले हैं ना आज भी। या लोग हमसे कुर्बानी नहीं लेते, कुर्बानी से डरते हैं ना, किसको नहीं अच्छा लगता दीन, किसको इधर बैठ के सुकून नहीं मिलता। उमर कहते हैं रावण का छूट जाओ, क्योंकि अल्लाह सारी नेकियां लेकर मुझे बस जहन्नुम से बचा दे तो मैं समझूंगा कि मैं अच्छा छूटा, मुझे अल्लाह से आला दर्जों की जन्नत की कोई उम्मीद नहीं है। ये वो उमर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होता तो वो उमर होते, साहिब इल्हाम, शैतान इनको देख के गली बदलता था। मैं और आप इतने मुतमईन क्यों बैठे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यही जिंदगी में इतना इत्मीनान किस बात का है? कर क्या लिए ना, हमारा नाम जन्नतियों में आ गया, नाम मुबशरात में आके जन्नत की खुशखबरियां मिल गई, नाम साबिकून अलवलून में, ना हम साहबे बदर हैं कि अल्लाह ने कह दिया जाओ जन्नत तुम्हारी, ना हम साहबे बैत रिजवान में, ना हमने कोई अल्लाह के नबी को अपनी आंखों से देखा कि हमारे ऊपर जहन्नुम हराम है, ना हम ताबे, खुशफहमी की इस बात की है। और कोई तरह हमारी दुनिया से सजा नहीं देखे। एक एक नैपकिन सजाते हैं दावत में, सैलड को सजता देखे, कोई हमारे खाने देखे, कोई हमारी स्वीट्स को देखे, अच्छी बात है। लेकिन मकसद जिस तरह दुनिया को सजाया ना आज तक, अब नेकियों को सजाने के दिन है। याद रखिए, जिस तरह दुनिया सजती, खाना अच्छा पका हो, अच्छा सजा हो ना, तो खुद बहुत लोगों का दिल करता है खाए। इस तरह अपनी नेकियों को हम सजा के लोगों को टेम्प्ट करें, ये होती है नेकियां, फिर लोगों का खुद दिल करेगा। देखिए, जब बड़े लोग नेकी करते हैं ना, तो नेकी भी बड़ी हो जाती है। इज्जत वाले लोग नेकी करते हैं ना, तो नेकी भी, इज्जत वाले लोग कुरान पकड़ेंगे ना, ये कुरान भी उठ जाएगा। देखिएगा, इस कुरान का मोल आप उसी वक्त ही पढ़ना है जब इसको बड़ों बड़ों ने उठाना है। और मेरा तो ला शख्सियत, जब लोगों ने उसके हाथ में कुरान देखना है ना, यूं फैशन की तरह देखिए लोगों के हाथ में कुरान आना, मेरी और आपकी बातों पे कौन आता है? और ये अल्लाह से पूछेगा कि तुम्हारी वुस्सत कितनी थी और तुम क्या कर सकते थे। बड़े लोग जो काम करते हैं, अल्लाह वही करा। पढ़े लिखे लोगों से तो सारी बातें जाती, फैशन सारे कहाँ से निकलते हैं और ट्रेंड्स कहाँ से निकलते हैं? रातों रात कमीते कट के आधी क्यों हो जाती है? जुल्म की हद नहीं है, सिर्फ इतनी कि वो चंद बड़ों ने पहन के दिखा दी। दुआ कीजिए अल्लाह इस वक्त इस्लाम को कोई बड़ी शख्सियत दे दे, और वो बड़ी को गुलकार अदाकार भी हो सकता है, कोई ऐसा शख्स कि जिसके हाथ में लोग अल्लाह इन कामों को दे करके, वाह ये है कुरान पढ़ने वाली चीज। इस तरह की नेकियां करो, जैसे हमारे कपड़े देख के लोगों के मुंह में पानी नहीं आता है ना, इस तरह की हम खूबसूरत नेकियां करें कि आपके खानदान वाले के नेकी करनी है तो ऐसी करनी है जैसी ये करती है, फिर बात बनेगी। अदरवाइज आप देखिए कि ये तो बस एवरेज दर्जे की नेकी है। कपड़े तो हम ब्रांडेड पहनते हैं, तो नेकियां हमारी ब्रांडेड क्यों ना हो? ये ठचकू ठचकू हमने अल्लाह को कल पेश करना 1.5 साल, ये कहना कि ये करने आई थी मैं इधर, ये करके गई हूं। मुझे तो रोना आता है अपने हाल पे कि मैंने अल्लाह को कल मुंह क्या दिखाना है। वो दिया अल किताब फतर अल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, सूरह कहफ 49 में ये मंजर पढ़ चुके हैं कि क्यामत के दिन किताब पेश की जाएगी और तुम मुजरिमों को देखोगे, मुशफिकीना मिम्मा फी, यहाँ क्या मुशफिकून वहां मुशफिकीन, एक ही बात है, ये फाइल है वो मकबूल है, सिर्फ इतना सा फर्क है। क्यामत के दिन लोग डर रहे होंगे किस बात से? मिम्मा फी, इन इंदराजात से, इन एंट्रीज से तुम घबरा रहे होगे जो तुम्हारे नामे अमाल में होंगी। यौमा यकूलू नया वही लतन माली हासिल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसी किताब है जिसने ना तो कोई छोटी बात छोड़ी ना बड़ी छोड़ी, सब कुछ ही लिख दिया। वजदू मामिलु हादिरन वला यस्लिमु रब्बुका अहदा, वही मजमून है, कोई नई बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला हमें ऐसी चीजें ला के पेश करता है। लेकिन बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हासा, कहा किया क्या जाए इस दिल का, कि इनके दिल तो इससे गफलत में पड़े हुए हैं। वलहुम आमालुम मिन दूनि ज़ालिका वहुम लहा आमिलून, और इनके तौर बहुत से मशाग़िल हैं इनके सिवा जिनके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। यानी अहले ईमान के जो मशगले होते हैं, ये इनसे फर्क है, इनकी दुनिया ही बड़ी है। इनके तो, इनका तो सबसे बड़ा जिहाद एक शादी का जोड़ा बनाना है, इनका तो सबसे बड़ा जिहाद एक घर की कमरे की मैचिंग लाना है। इनके बस वक्त कहाँ है कि ये दीन के लिए भागे, भलाई माने की फिक्र। इनका सरमाया, इनकी तवानाइयां सब दुनिया के मेयार को कायम करने के लिए, खूब से खूब तर की तलाश इनको भी है, लेकिन दुनिया के लिए कोई बात नहीं। हत्ता इजा यहाँ तक कि जब हम इनके खुशहाल लोगों को अजाब में पकड़ लेंगे, सोचिए जरा इस आयत को तसव्वुर में लाए, इजा हम यजअरून, तो वो इस वक्त डकारेंगे। ये जो मैंने तर्जमे में बड़ा मुश्किल से लफ्ज यजअरून चिल्लाना बोला था, जरा का लफ्ज कहते हैं जानवरों का डकारना। कभी गाय को बोलते देखे, भैंस, और खास तौर पे जब कोई दुश्मन लग जाए या जब बच्चा पैदा करती है गाय भैंस। आप यहां भी है ना, अब कल आखिरी सबक है इस बार सूरत का, उसमें भी ये लफ्ज देखेंगे, डकारेंगे, चिल्लाएंगे, चीखें निकल जाएंगी इनकी जब इनको अजाब आता है। कहा जाएगा ला तजरुल, चीखो चिल्लाओ, इन्नकुम मिन्ना ला तु, तुम्हारी कोई मदद ना की जाएगी, यू विल नॉट बी हेल्प। तुम्हारी सारी जिंदगी तो इन चीजों में गुजर गई जिसमें तुम अपने आप को खपा रहे थे, वो दुनिया तो बहुत पीछे रह गई, अब तुम अपने आप को इससे बचाओ। सारी भाग तुम्हारी दुनिया में थी, आज क्या हो गया? आज तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो। आप देखिए, मेरा नाम है अमारी क्यामत के लिए मेरे सामने खड़ा, जिसमें मेरी नियत नहीं, बात नहीं बात। जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो सांस की आवाज भी आपको तो रिकॉर्ड हो जाती है, बैकग्राउंड वॉइस पीछे को बच्चा बोलता है ना, तो वो हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाता है, टक टक की आवाजें आने लग जाती हैं कभी कुछ। और मजे की बात यह है कि वो हटा भी नहीं सकते, हम अपने नामे अमाल में से नॉइस को रिमूव नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो हम कर लेते हैं, अगर खामोशी हो तो पीछे से निकाल देते हैं, लेकिन बात जगह ऐसी जगह होती है कि या नॉइस निकाले या लफ्ज निकाल लें, फिर या लफ्ज काट देते हैं या फिर शोर के साथ सुनते हैं। क्यामत के दिन कुछ चेंज नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है, जैसा आपको अगर कोई हाथ में रिकॉर्डर पकड़ा दे कि बोलो, आवाज कांपने लगेगी आपकी, शक पड़ जाए ना कि कोई हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम 10 दफा सोचते हैं फिर बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात कोई कहता कोई बोलता है, तो मैंने कहती मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, आप ठहरे मैं रिकॉर्डर फोन खोलती हूँ रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि जिसको आपने मैसेज देना मैं उसको वैसे ही दे दूँ, तो मैं साफ देखती हूँ कि टोन बदल जाती है, सिर्फ इस खौफ से कि ये रिकॉर्ड। और कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इल्ला ये कि कोई ऐसी चीज की बात हो तो। लेकिन खौफ बहुत होता है कि पता नहीं हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, क्यामत के दिन क्या होगा मेरे रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ। और याद रखिए, यहाँ लफ्ज मुतरफीन जो आया ना आयत 64 में, जितनी दुनिया बढ़ती है ना उतनी गफलत बढ़ती है। वजह क्या है, क्यों दुनिया के साथ गफलत बढ़ती है? मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस आजकल बहुत याद आ रही है कि मैं अपनी उम्मत पे फकर का खौफ नहीं करता, इसका गुर्बत आ गई तो क्या होगा, वो साथ में दुनिया आ गई तो क्या बनेगा। आप पे में नहीं रहते, लोगों को तो कपड़े पहनने भूल जाते हैं, वो इतने ज्यादा निडर हो जाते हैं, दुनिया लगामे लगा लें, अगर किसी को दुनिया देनी है उससे पहले लगाम लगा लो कि इसको लेकर अल्लाह से जुड़ता है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा ये लफ्ज तजारून की वजाहत ले लें, जीम हमजा रा इसका रूट है, जार जारा जवार, दहशत और घबराहट के वक्त की दुआ, शिकार करते वक्त हिरन या गाय को, और शेर को देखकर जो आवाज निकलती है उसको ज्वार कहते हैं। उर्दू में अगर आप इसके लिए लफ्ज बोले ना, तो दुहाई देना, डकारना, चिल्लाना, चीखना। दुनिया में भी दुहाइयां देते थे लोग, इनके सामने इनको समझ नहीं आती थी, दुनिया में दुनिया के पीछे भागते थे, आखिरत में फिर भागेंगे कि हम किधर जाएं। कभी आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में से गुजरे, एक किसी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था कि जहां जले हुए लोग रखे जाते हैं ना, वहां उनकी ड्यूटी लगी थी, कोई ऐसी काम करती थी नर्सिंग या कोई हेल्पर थी, सिर्फ इस वजह से उन्होंने अपनी वो जॉब खत्म कर दी कि मुसलसल वो जख्मियों के कराहने की और चीखने की आवाजों से वो डिप्रेशन में जा रही थी। चिल्लाएंगे वहां, पीछे पड़ चुके सूरह हज की शुरू की आयतें नहीं थी कि सुनाओ भाई आज किधर हो, वो किधर गया रामदेह घर तुम्हारे जिनमें तुम बड़ी मौज मस्तियां करते थे। आगे भी पढ़ेंगे सूरह स्वाद आयत नंबर 3 में, कम अहलकना मिन कबलिहिम मिन करनिन फनादौ वला तहीन मनास, कितनी बस्तियों को हमने हलाक किया लेकिन आज क्या फायदा। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि हम अपनी तरजीहात को मुतय्यन करें। कसूर क्या था, कद कानत आयात तुतला अलैकुम। अब देखिए ये थीम आखिरी वजह बताई जा रही है, सारी बातें एक तरफ है, असल इस गमरा की वजह क्या थी कि बेशक आती थी तुम्हारे पास आयतें, فكنتم لعقابكم تنكسون، مگر تم اپنی ایڑیوں کے بال الٹ پلٹ جاتے تھے. یہ تھا قصور، اور بالکل یہی چیز آپ کل کے سبق میں آخری آیتوں میں بھی پڑھیں گے. شروع میں بات تھی قد افلح المومنون، اور اب یہ سورت کا اختتام شروع ہو گیا ہے. قصور ایک ہے، میری آیتیں جب تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. وجہ مجبوری تھی کوئی؟ نہ نہ، مستکبرین، روٹ کاز تکبر تھا اندر تمہارے. بطر الحق کی وغمت الناس، تم اس کو حقیر سمجھتے تھے یا پھر ٹو مچ سمجھتے تھے. اور وجہ بھی سامرن تہجرون، دوسری وجہ. پہلی وجہ قرآن سے رکنے کی تکبر، میں بہت بڑی، میں ایسی، میں فلاں، میں اتنے بڑے گریڈ کی افسر کی بیوی فلاں. آدھے قرآن سے رکنے کا، ان کو اپنے بڑے ہونے کا احساس قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قرآن بھی کوئی چیز ہے. لیکن سکس سامرن تہجرون، رات کی قصہ گویاں، لو سامر کو سمجھیں گے نا تو آپ کو اللہ پہ پیار آئے گا. سین نیم راج کا روٹ ہے، سمرا، سمرن کہتے ہیں، سامرن کہتے ہیں چاندنی رات کو، مون لائٹ جس دن ہوتی ہے. عربوں میں قصہ گوئی کا رواج تھا. اب راتوں کو ویسے تو سٹریٹ لائٹس نہیں تھی نا، تو چاند کی راتوں میں روشنی ہوتی تھی، اور صحراؤں میں آپ کو تھا کہ پھکو کھل کے آتی ہے کیونکہ بیچ میں بادل نہیں ہوتے. تو پیشہ ور قصہ کو، یعنی آرٹسٹ کہہ لیں آج کے نام پہ، ان کو راتوں کو بلاتے تھے، مجمع لگتے تھے، کنسرٹس ہوتے تھے، ڈانس کہہ لیں، رقص کہہ لیں، جو بھی اس کا مجرا کہہ لیں، کوئی نام کہہ لیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے، انٹرٹین کرتے تھے. یہ عام لوگوں کی تفریح کا ذریعہ تھی اور قصہ گوؤں کی کمائی تھی، ان کا پیشہ تھا، پروفیشن تھا. ایسے بہت سارے قصہ گو خاندان انڈیا ہندوستان میں بھی موجود ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ناموں کے ساتھ ہی آ جاتا کہ یہ گاتے بجاتے لوگ ہیں. اب ایسے لوگ چونکہ راتوں کو جو جاگتے تھے، تو کون فجر میں آئے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھے؟ تو اللہ نے یا مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے ہم سب کو بتا دیا کہ آج بہت سارے لوگ ہونا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ آ کیوں نہیں پاتے کہ سامرن، یہ رات کی پارٹی، یہ دعوت، یہ مہندی، یہ اٹھن، یہ فلاں فلاں، اور نتیجہ آخر میں کیا نکلتا ہے؟ تہجرون. چھٹتا ہے تو قرآن چھٹتا ہے، وہ پارٹیاں نہیں چھٹتی، کیونکہ رات غیر نہیں، فلاں نہیں، اکیلے رہ جائیں گے. نقصان کیا ہوا کہ ان کو چھوڑ اگر اب یہاں دیکھیں پروی زبان کا لطف، ہا پہ زبر ہوگی نا تو ہجرا، وہی جسے ہجرت بھی ہے، کترانا، پیچھے ہونا، ایوائڈ کرنے کے معنوں میں، لیکن ہا پہ پیش کر دے، روٹ ایک ہی ہے، تو فوحش کلام، نامناسب کلام، نیند میں بڑبڑانا، اردو میں کہتے نا ہزی، آپ دونوں کو فوحش آتا ہے، گندے لطیفے، گندے جو گندی باتیں، تو قرآن بور لگنے لگتا ہے، قصے کہانیوں میں دل لگ جاتا ہے، انسان کتاب میں کہاں بیٹھے. اور یہ جو لفظ ہے نا، تن کو سون، نقص اثر، نون کاف وات، نقوس کہتے ہیں کسی چیز سے پیچھے ہٹنا، ایڑیوں پر پلٹنا. نقص کشش کا اپوزٹ ہے، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں نا اٹریکشن، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ریپلشن، تو دے ریپیلڈ، یعنی وہ پیچھے ہٹتے ہیں، قرآن سے جان چھڑاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. غفلت میں رہنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ جس سبق کا موسٹ ڈرامہ ہے، کیا باقی سارے سبق لے چکے؟ اور یہ کون سے سبق ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے؟ پڑھائی تو آپ کی میٹرک کے بعد پوری ہو گئی تھی، یہ فلموں ڈراموں کے سبق کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ اور کتنی ایک بت کے آگے، اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو شاید اسے کچھ مل ہی جائے. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پورا قرآن جو ہے ہی ساری مہنگے تو فائدہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ گندی باتوں سے کبھی تذکیہ نہیں ہوتا، فحش کلامی اور گندے جملے और यहाँ लफ्ज रात पे भी गौर कर लीजिए, सामिरन में रात भी छुपी हुई है। रात का वक्त गुनाहों को प्रमोट करता है। अल्लाह के नबी ने क्यों कहा, और कुरान की आयत है कि मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के वक्त गुनाह करना आसान लगता है। कभी आपने एक बात सोची, हमेशा नाइट क्लब भी क्यों होते हैं, डे क्लब क्यों नहीं होते? इसलिए कि रात का अंधेरा गुनाहों को आसान करता है। कई ऐसी चीजें दिन की रोशनी में इंसान खुद भी उसको फेस ना करे, रात के अंधेरे में दोस्तों में कहते हैं चलता है। कभी आपने सोचा सिनेमा घरों की लाइट्स क्यों बंद कर देते हैं? डीप क्यों? क्योंकि रोशनी में इंसान खुद से शर्म करता है कि ये मैं कर क्या रहा हूं, ये मैं देख क्या रहा हूं, लेकिन रात के अंधेरों से पना लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला कहते हैं ये गौर ही नहीं करते। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी जिंदगी से ये फिक्शन निकल जाए जिसने आज हमें इस तरह खो दिया अपने अंदर कि हम इस प्यारी सी किताब से पीछे हो गए। अब यहां तक बात के बाद आगे मौजू पलटे का ब्रेक ले लेते हैं, कोई बात शेयर कीजिए। जी इशरत, आपने क्या सीखा आज? आप अभी हज से आई है ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाही दे। जो कैफियत कुरान पढ़ते वक्त क्लास में होती है, क्या हज में ऐसी अक्सर रहती है? यदि मुझे ऐसे लगता है कि हज भी करने जाए ना तो तभी मजा आता है जब सीरत पढ़ी हो और उन सारी बातों को जानते हो। आमतौर पे जो लोग हज कर रहे होते हैं और जहां गए मीना में मुजदलफा में, क्या ये दिक्कत होती है उनके दिल की हालत? और वहां जाके तर्स आता है कि बेचारे जो हज करने आ गए, इनको एक दफा पहले बैठ के कोई नमाज भी ठीक पढ़नी सिखा देते हैं। हिजाब से बेन्याज बाज वो सीधी सादी बेचारी औरतें होती हैं, बिल्कुल उनको नमाज भी नहीं ठीक पढ़नी आती। और बाद वो लोग जगह से लड़ रहे होते हैं, कभी गर्मी से लड़ रहे हैं, कभी सवारी पे जाने से लड़ रहे हैं। यानी वो रू नहीं आती दिमाग में जब तक इंसान के पास इल्म का पानी ना हो। जी और आप इधर से अम्री, आज के सबक ऑनलाइन पे भी लिखिए आप लोग। जी फारिया, आपने क्या सीखा? नेकी करके अल्लाह से डरना है। जीरम, आपने क्या सीखा? ये आगे आपने जी, आप रशीद यकीन करिए पूरा सबक जो है ना मेरे जहन में, सिर्फ हर सबक का एक लेसन, एक इमेज होता है ना, गम रहा गम रहा, ऐसे लगता है डुबकियां खा रहा है कोई, और आपके सामने कोई डूब रहा हो तो क्या आप उसको नहीं बचाएंगे? जी आप आपको ये गम मुबारक हो, और अल्लाह करे सबको ये गम में लग जाए। आपको पता है कि मंडे से इंशाल्लाह सूरह नूर शुरू हो रही है, क्या हम बाकी लोगों को इसमें शामिल नहीं कर सकते? कई लोग हैं, मुझे पिछले इस साल ही किसी ने बताया कि दौरे कुरान किसी जगह हुआ था, तो उन्होंने पूरा दौरे कुरान कर लिया और सूरह नूर छोड़ दी, और वो आखिरी दिन जिस दिन काफी ज्यादा लोग आए तो उस दिन कराई, और लोग बड़े शौक से सुन रहे थे उसको। कई ऐसे मौजू होते हैं जो फी जमाना हमारे जहनों में क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसके लिए सोचें कि हम किस तरह बाकी लोगों को भी उसमें इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए अजान तो बेहतर है, तो नमाज के फर्ज पढ़ेंगे और उसके बाद खाना लेकर आप लोग जल्दी से बैठे, 1:28 है, तो कोशिश करें 25 मिनट में सब कुछ हो जाए।
Gel